ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ अज्ञानस्तमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम्, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का आज के इस विशेष क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही विशेष दिन है ना, विशेष दिन। आज 2013 का इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से पहला दिन है और कल रात को हम सब ने बहुत विशेष उत्सव भी मनाया था। लेकिन इस दिन की विशेषता और बढ़ जाती है कि आज के दिन ही हमारे परम गुरु श्री प्रभुपाद जी के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर महाराज जी का तिरोभाव दिवस है। श्री भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर महाराज के तिरोभाव दिवस का अर्थ है कि वो दिन जब वैष्णव इस पृथ्वी से जाते हैं, अपने धाम को वापस चले जाते हैं, नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, उसको तिरोभाव दिवस बोलते हैं। साधारण जगत में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो शोक का विषय होता है, उसकी बरसी मनाई जाती है, लोग उसको याद करते हैं, रोते हैं। लेकिन वैष्णवों का आना और जाना दोनों ही दिव्य है, तो ये उत्सव है क्योंकि वो नित्य लीला में प्रवेश हुए हैं। हालांकि जो नरोत्तम दास ठाकुर जी का भी भजन गाया था, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी क्रंदन कर रहे हैं, पाषाणे कोटि को माथा अनिले पशिगो, कि पत्थर से अपना सिर फोड़ लूं और अग्नि में प्रवेश कर जाऊं क्योंकि मुझे संग नहीं मिला, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। हमें दुख तो होता है कि हमें उनका अपूर्व संग नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये उत्सव ही है क्योंकि वो भगवान राधा कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। तो बहुत ही शुभ दिन है आज, बहुत ही मंगलकारी दिन है। और हम इस जब सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष मंगलमय हो, तो कल हमारे गुरु महाराज हेजोलनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज बता रहे थे केवल इस तरह से विश करने से किसी का कर्म फल नहीं बदल जाएगा। विश यू हैप्पी न्यू ईयर ऐसे हजार कार्ड में इकट्ठे कर लू ग्रीटिंग कार्ड, इससे नहीं कि मेरे कर्म बदल जाएंगे, लेकिन आज शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज जी के चरित्र की कुछ चर्चा करके हम अपने कर्म फलों को बदल सकते हैं, अपने जीवन को हम शुद्ध कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है और इसकी विशेषता और बढ़ जाती है कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 1937 में पहली जनवरी को ही 5:30 बजे सुबह शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज जी का तिरुभाव हुआ था। ये भी एक विशेष संजोग है, कॉन्सिडेंस है कि उसी दिन, और आज भी 1 जनवरी है, तो बहुत विशेषता है। तो आज हम शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज से खूब कृपा की याचना कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों से उनके आविर्भाव और तिरुभाव दिवस के दिन हम डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। वैसे में पूर्ववर्ती आचार्यों को अपने गुरु के माध्यम से अप्रोच करना चाहिए, लेकिन आज के दिन तिरुभाव दिवस और आविर्भाव दिवस में हम डायरेक्टली उनसे खूब प्रार्थना कर सकते हैं। और भक्तिदास सिद्धांत सर जी महाराज जी का चरित्र एकदम अद्वितीय है, गुणों की खान है जिसे कहते हैं। और हम अपने बहुत ही सीमित क्षमता से प्रयास करेंगे, सभी आचार्यों से, पूर्ववर्ती आचार्यों से, वर्तमान आचार्यों से, सभी वैष्णव से प्रार्थना करते हुए कि हम इनका गुणगान कर सकें। और जितना हम इनका, जितना शुभ कार्य भगवान के कथाओं का श्रवण करना है, उतना ही शुभ कार्य भगवान के भक्तों की कथा का श्रवण करना है। और दोनों ही दिव्य है। हम अपनी सीमित बुद्धि से भगवान के चरित्र को नहीं समझ सकते, ना ही महाभागवतों के चरित्र को समझ सकते हैं, लेकिन केवल उनका गुणगान करके हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। भगवद्गीता के 7वें अध्याय में बताया गया है, येषां तु अनुगतः पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां त्रिविधा। हमें से हर साधक ये चाहता है कि हम भक्ति के पथ पे बहुत दृढ़ रहे, चाहते नहीं चाहते, लेकिन हमें से ये भी देखते हैं कि हम दृढ़ नहीं रह पाते, हमसे बार बार गलतियां हो जाती है। तो दृढ़ता भक्ति में कैसे आएगी? बलदेव विद्याभूषण जी श्लोक की टीका बताते हैं, भक्ति में दृढ़ता आएगी अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न कर लेते हैं। पुण्य कर्मणाम का अर्थ है ऐसे कर्म जिसे पूर्ववर्ती आचार्य प्रसन्न हो। तो आज का दिन है, हम श्री भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज जी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा की प्राप्त कर सकते हैं, उनका गुणगान करके और उनके जीवन चरित्र से कुछ सिद्धांत सीख के जिनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करके। तो श्री भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर महाराज का नाम संन्यास से पहले का नाम था बिमला प्रसाद, और बचपन से ये बहुत जिसे कहते हैं मेधावी छात्र थे। 7 वर्ष की आयु में इन्होंने भगवदगीता पूरी याद हो गए थे और भगवदगीता के श्लोकों पर टीका भी करते थे और बहुत से लेख लिखने भी शुरू कर दिए थे और ज्योतिष में बड़े प्रखार पंडित थे। 16 वर्ष की आयु में इनको सिद्धांत सरस्वती का टाइटल मिल गया था और बड़े प्रखार पंडित थे। और 7 में 8 वर्ष की जब इनकी आयु थी, इनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको कुर्मा विग्रह दे दिया था और फिर आचार्य की सेवा भी करते थे। अब हम ऐसे चरित्र का कि कई इनके जैसे कहते हैं उपलब्धियां रही हैं। साधारण जगत में हम देखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनका हम गुणगान करते हैं उनकी उपलब्धियों की चर्चा करके। तो हम जैसे पूर्ववर्ती आचार्य हम केवल उनकी उपलब्धियों की चर्चा करके उनको नहीं समझ सकते क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन भक्तिसिद्धांत सर ठाकुर महाराज को विशेष जिसे कहते हैं प्रयोजन था, वो राधा कृष्ण की लीला में नयन मणि मंजरी है। नयन मणि हमारे जितने आचार्य हैं पूर्ववर्ती, नयन मणि मंजरी है। नयन मणि यानी कि भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधिका बहुत प्रिय है और श्रीमती राधिका के पूरे व्यक्तित्व में उनका चेहरा बहुत प्रिय है, उनके पूरे चेहरे में उनके नयन बहुत प्रिय है और उनके नयन में उनके जो नयन मणि उनके जो पुतलियां हैं वो बहुत प्रिय है, कृष्ण की बहुत प्रिय है। इसी ढंग से श्रीमती राधा रानी जब श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कैसे करती है? नयन से, और नयन में भी अपनी पुतलियों से। तो देख सकते हैं कि नयन मणि मंजरी है वो, तो कितने प्रिय होंगे दोनों राधा और कृष्ण को। और वो यहां पर इस पृथ्वी पर आते हैं एक विशेष प्रयोजन से, और ये प्रयोजन है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे भूतल पर स्थापित करना। रूप गोस्वामी जी की शिक्षा भी यही थी कि पूरे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे भूतल पर स्थापित करना। और क्योंकि उनका पूरा जीवन यही था कि जब तक प्राण शरीर में है तब तक प्रचार किया जाए। और हम देखते हैं कि उनको विशेष शक्ति प्राप्त थी क्योंकि इस प्रचार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरी पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट सहे। जो व्यक्ति भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करता है, जो वो भगवान को बहुत प्रिय है, और जितना ज्यादा वो भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करने में कष्ट सहता है वो कृष्ण का उतना प्रिय बन जाता है। जितनी मात्रा में हम भगवान की शिक्षा का प्रचार करने में कष्ट सहेंगे तब पंते लोक तापेन, क्योंकि लोगों के ताप को दूर करने के लिए खुद तपस्या करते हैं, खुद कष्टों को सहन करते हैं, वो भगवान को अतिशय प्रिय है। तो भक्ति सिंह ठाकुर महाराज चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय है, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट सहे। जब उनका आविर्भाव हुआ तो उस समय जो गौड़िया वैष्णव धर्म था ये बिल्कुल घिरा हुआ था, जैसे सूर्य बादलों से घिर जाता है। किससे घिरा हुआ था? प्रकट सहिज्य से। प्रकट सहिज्य का अर्थ होता है जो कि राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को बहुत चीप, बहुत सस्ता ले लेते हैं, और वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। और तरह तरह के जो जैसे कहते हैं अप सिद्धांत आ गए थे, 13 तरह की अप से प्रधायित थी, आउल बाउल सिक्खी बेखी, जो कि जिसे कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक शिक्षाएं थी वो जन साधारण तक नहीं पहुंच पा रही थी, बल्कि उनकी बहुत ही शिक्षाएं एक दूषित रूप में जनसाधारण के पास पहुंच रही थी। भक्ति सिंह महाराज जी के पिता भक्तिनोद ठाकुर तक जब वो उनका प्राकट्य हुआ था तब तक गौड़िया वैष्णव को एक सेक्स रिलीजन के नाम से जाना जा रहा था, इतना बदनाम हो गया था। उसके बाद भक्तिनोद ठाकुर जी ने खूब संघर्ष किया और फिर उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसी संतान दो जो प्रचार में मेरी मदद करे ताकि मैं इस सबको पूरा इसका दमन कर सके। तो फिर भक्ति सिद्धांत प्रकट हुए और भक्ति सिद्धांत प्रकट इस जन से हुए जैसे कि उन्होंने पूरे विश्व में, पूरे भारत में भ्रमण किया गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। तुलना की जाती है जिस जन से अवधूत नित्यानंद प्रभु ने पूरा भ्रमण किया था, उनके भ्रमण करने के मुख्यतः प्रचार के दो उद्देश्य थे, प्रेम भक्ति का प्रचार करना और पाखंडियों का दमन करना। इसी ढंग से भक्ति स्नान महाराज ने भी जो प्रचार किया उनके दो उद्देश्य थे, प्रेम भक्ति का प्रचार और पाखंडियों का दमन। पाखंडी मतलब कि प्रकट सहिजिया और जाग गोसाई। जाग गोसाई का अर्थ होता था कि जो भगवान की सेवा का अधिकार उन्हीं को है जो गोस्वामी घराने में जिनका जन्म हुआ है, जबकि भक्ति सिद्धांत महाराज ने स्थापित किया कि कोई भी व्यक्ति शुद्ध परिवार में जन्म लेकर भी ब्राह्मण बन सकता है, भगवान के अच्छे गुरुओं की सेवा कर सकता है अगर वो प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ले। तो उस समय गौड़िया वैष्णव सिद्धांत बिल्कुल छिप चुका था, लिप्त हो रहा था, उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा। ढाका में जब भक्ति सिद्धांत महाराज गए तो प्राकृत सहिज्या और जाग गोसाई ने प्रचार कर दिया कि भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य को कोई भी भिक्षा नहीं देगा, सबने दरवाजे बंद कर दिए। तो उनके शिष्य उनके पास आए कि क्या करें, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कोई बात नहीं, अगर गंगा का पानी पी के जीना पड़े जी जाओ, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और प्रचार करते रहे, धीरे 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 लोगों की आंखें खुली और लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया और फिर ढाका में पूरा उन्होंने एक बहुत सुंदर केंद्र भी स्थापित कर दिया। तो उन्होंने देखा कितना साहस दिखाना पड़ा। जो आज हम गौड़िया वैष्णव का एक रूप देख रहे हैं, जो आज हमारे सामने इतना सुंदर ये मंदिर है, कितने पूरे विश्व में 600 केंद्र है, सारी सुविधाएं हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा दिया पूरा सिस्टम है, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये हमारे पास इतने सुंदर ग्रंथ हैं, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थे, सब कुछ लुप्त हो चुका था। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज और श्रील प्रभुपाद, इनके संघर्ष में जीवन के कारण ही हमको ये सब उपलब्ध है। जब भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन काल में उनको कितने वर्ष संघर्ष करना पड़ा चैतन्य चैतन्यमृत की कॉपी को ढूंढने के लिए। चैतन्य चैतन्यमृत की उनके पास एक कॉपी प्रति भी नहीं थी। बहुत सालों के संघर्ष के बाद उनको चैतन्य चैतन्यमृत की एक प्रति किताब पुस्तक मिली। और भक्ति सिन्हा स्वामी ठाकुर महाराज ने सारा का सारा ज्ञान लुप्त था, कितने ही शास्त्र लिखे, कितना संघर्ष करके असली जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत था उसको उन्होंने स्थापित किया। इससे पहले यह समझा जाता था कि जो साधु लोग हैं वो बस उनको बिल्कुल अलग रहना चाहिए, कहीं जंगल में जैसे सठ गोस्वामी थे, एक रात एक पेड़ के नीचे गुजारते थे, दूसरी रात दूसरी पेड़ के नीचे, बस केवल कोपिन धारण करके और घूमते रहते थे। तो लोग साधु ऐसे अच्छे लगते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला अगर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पूरे विश्व में प्रचार करना है तो पूरे विश्व में जो कुछ भी उपलब्ध है उसका भगवान की सेवा में प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल रिवोल्यूशनरी आइडिया, क्रांतिकारी आइडिया था। इससे पहले जितने भी वैष्णव थे, विशेषकर बंगाली, जो बंगाली वैष्णव होते हैं या बंगाली पुरुष व्यवस्थाएं भी होते हैं, वो जाने जाते हैं बड़ा मीठा मीठा बोलने के लिए, है ना, वैसे होते हैं मुंह में रसगुल्ला रख के बोल रहे हो, बहुत मीठा बोलते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कड़क, बोले जब तक कोई हरि कथा सुन के जिसका हिल ना जाए, पूरा हिल ना जाए,
पूरा समझ है कि मेरे जो मेरी गलत धारणाएं थी बिल्कुल गलत है, इसको कैसे मैं त्यागूं, सोचने में मजबूर ना हो जाए, तो उस हरिकथा का लाभ क्या? हरिकथा सुनते ही हृदय क्रांति आ जानी चाहिए। तो बिल्कुल दबा होकर बोलते थे, उनका कहना था कि साधत्व का सार कोई दिखावटी वैराग्य नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सब अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, नहीं, असली साधु वो है जो परम सत्य की सेवा करे और उसका प्रचार करे डंके की चोट पर, और महाप्रभु की शिक्षा को स्थापित करने के लिए एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्णा, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, जाएंगे। दिखावटी त्याग नहीं, नहीं नहीं, हम ये नहीं छूते, हम इसको नहीं करते, नहीं, सब कुछ भगवान की सेवा में, सब कुछ। उन्होंने युक्त वैराग्य की परिकाष्ठा को स्थापित किया। हम अपनी आध्यात्मिक चेतना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं इस संसार की प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाकर, ये उन्होंने हमें प्रदर्शित किया। केवल झूठा त्याग करके हम अपनी आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जब भगवान का मतलब है वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है, उनमें कोई कलमश नहीं है, तो भगवान की शक्तियां कैसे दूषित हो सकती हैं? प्रदूषण हमारी मानसिकता में है कि हम इसको भोग की दृष्टि से देखते हैं। सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है। तो उन्होंने इस युक्त वैराग्य के लिए बहुत सुंदर कविता लिखी। उन्होंने बोले आसक्ति रहित संबंध सहित, आसक्ति रहित होकर और संबंध हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखकर, और सारी की सारी वस्तुएं माधव के समान है, कृष्ण के समान है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान की सेवा में हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक युक्त वैराग्य का एक नया कंसेप्ट स्थापित किया और दिखाया कि कैसे हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। इससे पहले जो साधु होते थे बहुत ही दीनहीन अवस्था में रहते थे, फटे पुराने कपड़े डाले कहीं भी रह गए। उन्होंने बोला अगर इस अवस्था में रहोगे तो कैसे पूरे विश्व को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से आकर्षित कर पाओगे? आप सोचिए, अगर आज इतना सुंदर मंदिर ना होता तो आप में से कोई न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आता? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से कैसे आकर्षित होंगे? तभी रूप गोस्वामी जी ने भी इतना बड़ा सुंदर मंदिर बनाया था राधा गोविंद देव जी का, और सनातन गोस्वामी जी ने भी राधा मदन मोहन का बहुत सुंदर भव्य मंदिर बनाया था। राधा गोविंद जी का मंदिर इतना ऊंचा था कि औरंगजेब को ईर्ष्या हो गई कि उनके लाल किले से भी ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने उसको तुड़वाना पड़ा, उसको उसे तोड़ दिया उस मंदिर को। तो वो क्यों इतने बड़े भव्य मंदिर बनाते थे? ताकि हम जन साधारण को आकर्षित कर सके। तो भक्ति शरण महाराज ने बोला कि जिस ढंग से गौड़िया वैष्णव रह रहे हैं, इस ढंग से चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है कि पृथ्वी के कोने कोने में उनकी शिक्षाओं का प्रचार होगा, वो कैसे स्थापित होगा? तो पूरे विश्व को हमें अपने प्रति आकर्षित करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बोला कि प्रचार में जितना धन खर्च सकते करो, लोगों को अपने प्रति आकर्षित करो। उन्होंने अपने शिष्यों को विजिटिंग कार्ड दिए, विजिटिंग कार्ड यूज करो। पहला एक कंसेप्ट था कि साधु लोग विजिटिंग कार्ड यूज कर रहे हैं। उन्होंने बोला खूब गाड़ियां, उन गौड़िया मठ में गाड़ियां थी उस समय, आज हम इस कौन में गाड़ियां देखते हैं, गौड़िया मठ में उस समय गाड़ियां थी, सन्यासी केवल पैदल चलते थे। पहली बारी भक्ति सिंह महाराज कैसे सन्यासी थे जो कि मोटर कार में बैठे, पहली बारी भक्ति सिंह महाराज कैसे सन्यासी थे जिन्होंने कोट डाला, सिले हुए कपड़े डाले, पहली बारी भक्ति सिंह महाराज कैसे सन्यासी थे जिन्होंने समुद्र पार की यात्रा के लिए अपने शिष्यों को भेजा। अरे पूरी पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करना है, आप एक कोने में बैठ के फटे हुए कपड़े डाल के बोले, अपनी दीनता अपनी गरीबी दिखा के ना तो आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हो ना मिशन पूरा कर रहे हो। बड़े गरीब है जी, हम कुछ दिखाते हैं, उससे होगा क्या? होगा क्या? मिशन ये है कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, चैतन्य महाप्रभु कृपा का प्रचार पूरे विश्व में करना है। इसलिए कह रहे थे अगर हम किसी के पास जाएं तो दूसरा व्यक्ति हमसे इंप्रेस हो जाना चाहिए कि ये मेरे, इसने मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े डाल रखे हैं, ये मेरे से ज्यादा अच्छा शिक्षित है, मेरे से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, मेरे से ज्यादा अच्छा सिविलाइज है, कल्चर्ड है, जेंटलमैन है। तो एक जब भौतिकवादी व्यक्ति एक साधु के इन फीचर से इंप्रेस होगा तो फिर धीरे धीरे देखेगा कि अरे ये सब कुछ होते हुए भी ये कितना अनासक्त है, बड़ी गाड़ी में आ रहा है लेकिन फिर भी कितना अनासक्त है, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के प्रति आकर्षित होगा। एक बेचारा मरा हुआ था, कोई वैसे बैठा हो जप कर रहा है, मरे ये है ही ऐसे, ये साधु होने ऐसे चाहिए। अधिकांश लोग देखते हैं कि भक्तों को बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े कपड़े डाल रहे हैं, अच्छे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, अच्छे लैपटॉप और फ्लाइट से इधर भाग रहे हैं, कहीं उनको ईर्ष्या हो जाती है, अरे ऐसे साधु होते हैं। कई बार हम जब ट्रेन में जाते हैं तो हम देखते हैं बाकी लोग क्या प्रसाद खा रहे हैं, सूखी रोटी और अचार के साथ खा रहे होते हैं, हम लोग अपना प्रसाद करते हैं, छप्पन भोग सब कुछ, क्या नहीं है उसमें, उसमें पिज्जा भी है, केक भी है, पेस्ट्री भी है, पूरी भी है, हैरान हो जाते हैं। एक के बाद एक गुलाब जामुन आ रहा ट्रेन के अंदर ही, भक्तों के अपने नींबू पानी ट्रेन के अंदर ही सारे अरेंजमेंट लेके चलते हैं भक्त लोग, तो देखता रहता है व्यक्ति। एक बार ये मुखारे तो बंदा देखिए अब क्या है, अब क्या है? और हम लोग आराम से पा रहे हैं, तो मन को सहन नहीं होता, अरे ये कैसे साधु है, दिखने में दुबले पुतले खाते हैं और कैसे खा जाते हैं, और इनको वैराग्य ही नहीं है, और खुद बेचारे सुख रोटी के साथ अचार खा रहे होते हैं, फ्रेंड सब परेशान रहते कि कहां से आ रहे हैं इनके पास। एक बार प्रभुपाद को रिसीव करने में एक रॉयल फ्रेस गाड़ी गई प्रभुपाद को रिसीव करने, तो जर्नलिस्ट था उनसे जेलस हो गया, बोले स्वामी जी इतनी महंगी गाड़ी में आप, अच्छा नहीं लगता साधु इतनी महंगी गाड़ी में। प्रभुपाद ने ये क्या है, शिष्यों को अपने गुरु के लिए सोने की गाड़ी होनी चाहिए, ये तो लोहे की गाड़ी है, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, सोने की गाड़ी होनी चाहिए क्या है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमने प्रभु वो बताते भक्ति महाराज की लोगों को चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं से आकर्षित करने के लिए कुछ ऑपुलेंस ऐश्वर्य प्रदर्शित करना पड़ेगा उनकी रिस्पेक्ट जीतने के लिए। तो कोई पूछ सकता है ये तो चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत के विरुद्ध में है, अमानी ना मानते आप रिस्पेक्ट ले रहे हो, ये कैसे साधु हैं चैतन्य महाप्रभु शिक्षाओं का खंडन कर रहे हैं। नहीं, लोग जो रिस्पेक्ट ले रहे हैं वो अपने लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो रिस्पेक्ट लेके उस बद्ध जीव के अंदर कृष्ण के प्रति आदर विकसित कर रहे हैं। जो एक भक्त आदर करेगा तब वो उनसे सुनेगा और तब धीरे धीरे वो कृष्ण के प्रति उन्मुख होगा जो भी विमुख हुआ पड़ा है। तो कितना रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट था। वो एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने कि गवर्नर को बुलाते थे, अंग्रेज गवर्नर आए हमारे अपने मठ में। आज हम देखते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो लोग बोलते हैं देखो सन्यासी लोग भी देखिए आजकल राजनेताओं की पूछ करते हैं, उनकी चमचागिरी करते हैं, ये थोड़ी साधु हो गए। नहीं, किसी न किसी ढंग से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो उन्होंने गवर्नर को बुलाया जो उस समय थे, एंडरसन गवर्नर थे बंगाल के, वो मायापुर में आए गोड़िया मठ में। और हैरानी की बात यह है उन्होंने कलकत्ता के एक होटल से उनके लिए मीट उनको सर्व किया। कितनी अजीब सी बात है, बोले अगर इनको मैं मीट नहीं दूंगा, बोला हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते जी, हम तो ये कर रहे हैं। उसको एंडरसन गवर्नर आया गोड़िया मठ में, एक बहुत बड़ा न्यूज है गोड़िया मठ कहाँ पे है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपा, अरे कहाँ है गोड़िया मठ, क्या होता है अभी, चैतन्य महाप्रभु का एक मठ है। कितना एक प्रचार हुआ, तो मौका देखते थे कैसे। एक जर्मन स्कॉलर आया, उनको उन्होंने सिगरेट ऑफर करवा दी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्ण। जब ये बातें सुनेंगे हमारे करें, हम भी दमांगों जो भी करेंगे भगवान के सेवा लगा देंगे। तो एक बार उनसे पूछा किसी ने ये कैसे आप कर लेते हैं, तो भक्ति सिंह महाराज ने बोला ये आपकी पर्सनल कैपेसिटी पर निर्भर करता है, बड़ा ईमानदार रहना चाहिए। हम लोग धन स्त्री यश इसको हम भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ अपनी अपनी व्यक्तिगत क्षमता को देखें कि हमारी क्या क्षमता है। नहीं तो क्या होगा कि ये धन स्त्री यश कि हम जब संग में आते हैं तो हमें भोगने की इच्छा जो हो जाएगी, थोड़ी सी भोगने की इच्छा है तो हमारा पतन हो जाएगा। भक्ति सिंह महाराज का अपना जीवन बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। एक बार उन्होंने वैराग्य पे बहुत बड़ा लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद जब अपने डेस्क पे बैठे थे कुछ लिख रहे थे तो साथ में स्टोर था और उसमें भगवान के भोग के लिए कुछ फल पड़े थे, तो एक बंदर आया और उसमें दो केले छीन के ले गया। भक्ति सिंह महाराज ने कहा बंदर है और केले छीन के ले रहा है, उनसे रुका नहीं गया, उसको भगाने के लिए भागे तो स्याही पड़ी थी डेस्क पे, वो स्याही गिर गई और जो लिख रहे थे पूरा पूरा खराब हो गया, और भाग के उसे दो केले ले आए। तो उनके शिष्य ने पूछा सुबह आपने वैराग्य पे इतना बड़ा लेक्चर दिया, अबे दो केले जा रहे थे, दो केलों को रोकने के लिए सब कुछ खराब कर दिया, समझ नहीं आया गुरु क्या है। तो उन्होंने बोला देखो ये दो केले हैं मेरे नहीं है, ये श्रीमती राधा रानी के हैं जो कि उन्होंने कृष्ण को ऑफर करने थे, तो राधा रानी के केले थे, मेरे केले नहीं थे, तो मेरा कर्तव्य मेरे किसकी रक्षा करनी है। तो ये कंसेप्ट है, ये सोचिए किस ढंग से वो हर चीज को देखते थे, हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखते थे। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में आते संबंध ज्ञान दायित्व थे, वो संबंध ज्ञान में बिल्कुल प्रखर। जब तक हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा हम हर वस्तु को कृष्ण से अलग देखते हैं और सोचते हैं मेरे भोग के लिए, और जब हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखेंगे तो उस वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। तो ये है युक्त वैराग्य जो कि रूप गोस्वामी जी ने बताया और उन्होंने इस युक्त वैराग्य का उपयोग भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंचने के लिए किया। युक्त वैराग्य का अर्थ देखिए, एक तरफ होते हैं भोगी और एक तरफ होते हैं त्यागी। तो युक्त वैराग्य बहुत ही संतुलित मार्ग है भक्ति में। सब कुछ भक्ति का अर्थ है सब कुछ अखिलार्थ कृष्ण चेष्ट, सब कुछ भगवान की अखिलार्थ कृष्ण कृष्णार्थ अखिल चेष्ट, सारी की सारी चेष्टाएं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस ढंग से वो एक बहुत रिवोल्यूशनरी उन्होंने सिद्धांत को स्थापित किया। भक्तिसिद्धांत महाराज कहते थे जीवन की हर समस्या का समाधान हरि कथा है, हर समस्या का समाधान। जिस ढंग से बताते थे कि कृष्ण की हम अकेली पूजा नहीं कर सकते, कृष्ण की पूजा करते हैं कृष्ण के स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ, उसी ढंग से हरि नाम भी हम अकेले नहीं जप सकते। अगर हरि नाम बिना हरि कथा के कर रहे हैं वो अपूर्ण होगा और ज्यादा फलदायक नहीं होगा। इसलिए सही ढंग से, कई लोग बोलते हैं हरे नाम एव केवलम, कलयुग में केवल हरि नाम है तो श्रवण पे इतना ध्यान नहीं देते, हरि कथा पे इतना ध्यान नहीं देते। तो भक्ति सरमार ने बताया कि बिना हरि कथा के हम हरि नाम नहीं ले सकते और जीवन की हर समस्या का समाधान उन्होंने बताया हरि कथा है, भगवान की कथा का श्रवण करना। वो कहते थे तुम मुझे अपने केवल कान दे दो और ध्यान पूर्वक विनीत भावना से श्रवण करो, इससे हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और भक्ति सिंह महाराज बहुत लंबे लंबे लेक्चर देते थे, 4 घंटे 6 घंटे बहुत लंबे लंबे लेक्चर। तो उनसे पूछा गया इतने लंबे लंबे लेक्चर क्यों देते हो, कह रहे लोगों के अंदर इतने मिसकंसेप्ट हैं और सारे लोग इतनी गलतियां करते हैं तो मुझे बहुत बेसिक से शुरू होना पड़ता है। तो समझाते बहुत समय हो जाता है। एक बार वो कलकत्ता से गुवाहाटी में आए और गुवाहाटी में आने के बाद फिर 4 घंटे का लेक्चर दे दिया। तो उनके जो यजमान थे, जो उनके जिनके घर में ठहरे थे, बोला स्वामी जी अब तो रेस्ट कर लीजिए, थके होंगे। बोले हरी कथा करना ही रेस्ट है, मैं हरी कथा कर रहा हूँ, ये मैं रेस्ट ही तो ले रहा हूँ। तो उनकी हरी कथा एक बार कहीं पे सीताराम लक्ष्मण जी के विग्रह की स्थापना हो रही थी, तो वो स्थापित करने के लिए वहां गए और कथा कर रहे थे। तो जहां जिस घर में वो गए थे उनकी सीताराम हनुमान जी में तो रुचि थी, कृष्ण के भक्ति में कोई रुचि नहीं थी और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा में तो कोई रुचि थी नहीं। और भक्ति से हमारा जो बोल रहे थे कोई गंभीरता से सुन नहीं रहा था, केवल औपचारिकता भी निभाई जा रही थी। तभी वहां पे अचानक शोर मच गया और मालूम चला कि जिनके घर में ये फंक्शन है उनका छोटा सा बच्चा था वो यज्ञ की अग्नि में गिर गया। सब रोने लगे। भक्ति से हमारा चुपचाप कथा करते रहे, बोले जहां हरी कथा हो रही है वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। इतने उन्होंने दृढ़ता के साथ बोला। तभी देखा कुछ ही समय के बाद छोटा बच्चा आराम से टहलते हुए वहां पे आ गया। तो ये उनकी श्रद्धा थी हरी कथा के अंदर। तो जहां हरी कथा होती है वहां कुछ भी अशुभ घटित नहीं हो सकता। जिस प्रसंग में, जिस लीला में, जिस धारणाओं में, जिस फिलॉसफी में हमारी हमारी खुद की श्रद्धा होगी, दृढ़ता होगी, जो सुनने वाला है उसको भी वही दृढ़ता प्राप्त होती है। तो भक्ति से हमारा पूरा वो जब हर समस्या का समाधान श्रवण है, हरि कथा का श्रवण। एक बार वो कहीं जा रहे थे, बांग्लादेश में कहीं नहीं था, ढाका में था। तो वो बैलगाड़ी में बैठे होते थे और उनके जो शिष्य होते थे वो पैदल चलते थे। तो बैलगाड़ी में बैठे बैठे साथ में एक बालक था, स्थानीय रहने वाला कोई। तो भक्ति सिंह महाराज इतने बड़े सन्यासी, उस बालक से जनरल बातचीत करने लगे, क्या नाम है बेटे तुम्हारा, कहाँ रहते हो, कैसे हो, केवल इतनी सी बातचीत की और फिर उतर के चले गए। कुछ समय वो बालक ने जब थोड़ा सा संपर्क हुआ उनका भक्ति सिंह महाराज से, वो इतना प्रभावित हो गया उसके हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति करने की उत्सुकता जाग उठी और सब कुछ घर बार छोड़ के उसने मठ ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो बड़ा सन्यासी बन गया। उसका नाम पड़ा आश्रम महाराज। तो केवल इतनी बातें करने से कि क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बस इतना करने से बस। तो हम देखते हैं कि जब महाभागवत होते हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करना, क्योंकि वैसात्मिक का बुद्धि होते हैं। हालांकि क्योंकि वो वैसात्मिक का बुद्धि है तो दिखने में बड़ी साधारण बात है कि पूछ रहे क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, कोई कृष्ण कथा नहीं की, फिर भी जो सुनने वाले के हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो गया। और तथा कथित जो प्रोफेशनल होते हैं भागवत करने वाले, वो दिखने में कृष्ण कथा कर रहे हैं लेकिन किसी के हृदय में कृष्ण प्रेम उदित नहीं होता। महाभागवत की साधारण से साधारण क्रियाएं, उनका चलना, उनका खाना, उनका बोलना, उनका स्नान करना, उनका सोना, उसको देखने मात्र से ही कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जब पानी पीते थे तो ऐसे करके पीते, और इतना सुंदर लगता था वो दृश्य, यूं करके यूं कर और सीधा अंदर जा रहे, ऐसा दिव्य लगता था उसको देखते ही लगता था। वहां सेब का प्रसाद खाते थे, काट के टुक लिया तो कई शिष्य बेचारे कोशिश करते थे पानी यहां कर रहे, तो वो कहते आप कॉफी नहीं कर सकते हैं। तो देखने मात्र से ही भक्तों को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो ये महाभागवत है, उनसे थोड़ी सी बातचीत की और वो सन्यासी बन गए। तो हरि कथा में वो विशेष इस पे जोर देते थे कि हर भक्त को हरि कथा पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे उनका कोई शिष्य अगर कोई भागवत कथा चल रही है और कोई सो जाता था, कई बार हम बहुत अच्छी नींद आती है ना, तो वो कहते थे कि ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ पे भागवत कथा हो रही है तो यहाँ पर सारे मेरे गुरु आए हुए हैं, गोरकिशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ बाबा जी और सारे पूर्ववर्ती आचार्य आए हुए हैं, अगर आप सो रहे हो कक्षा में तो आप उनका अपमान कर रहे हो। तो अगर हम भागवत कक्षा में सोते हैं तो हम पूरी गुरु परंपरा का अपमान करते हैं। एक बार कहीं भागवत कथा उनको क्लास देनी थी तो कुछ ही समय दूरी तक चटाई बिछाई गई, तो उन्होंने बोला बाकी खाली जगह पड़ी है इसलिए क्यों नहीं, और ज्यादा लोग नहीं आएंगे। क्या ज्यादा लोग नहीं आएंगे, सारे आचार्य आएंगे, सारे देवता कण आएंगे, बिछाओ चटाई ये कन्विक्शन है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, कहने के लिए बात नहीं है। जब इस कन्विक्शन के साथ हम भागवत कथा करते हैं, सुनते हैं, तब इसका प्रभाव पड़ता है ना। श्रवण भी एक सेवा है, ऐसा नहीं श्रवण ये नहीं एंटरटेनमेंट है। अक्सर हम श्रवण एंटरटेनमेंट के रूप में करते हैं ना, चलो देखें आज क्या कहते हैं, सुनते हैं आज, तो एंटरटेनमेंट के रूप में करेंगे तो हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मनोरंजन करके श्रवण से परिवर्तन नहीं होगा। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो कथावाचक है उसकी क्या मानसिकता होनी चाहिए, कथावाचक ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि आज मैं बोलने जा रहा हूं और इतने सारे लोगों को सुनाऊंगा, बताऊंगा मैं कुछ नहीं। बोले जब मैं बोलने जाता हूं तो केवल यही मेरा दृष्टिकोण होता है कि इन सब वैष्णव की मैं कैसे सेवा कर सकता हूं, कैसे मैं इनका दास बन के इनकी सेवा कर सकता हूं। और कृष्ण अपने आप अंदर से मुझे प्रेरित करते रहते हैं कि क्या बोलना है। तो एक बार उन्होंने देखा कि उनके एक सन्यासी थे बौद्ध महाराज, वो क्या कर रहे थे, सारे ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे थे, देखो बाहर जाते हो ऐसे पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए, ऐसे फिलोसफी प्रेजेंट करनी चाहिए। तो पाकिस्तान महाराज आए, खूब डांटा, बोले इस तरह की ट्रेनिंग से ये बोल नहीं पाएंगे, जब तक कोई सेवानमुख है जीवा दो, जब तक ये सेवा नहीं करेंगे इनके अंदर बोलने की शक्ति नहीं आएगी। केवल स्किल सीखने मात्र से कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता, जो जितनी ज्यादा सेवा करेगा वो उतना अच्छा भगवान उसको प्रेरित करेंगे और वो बोल पाएगा। तो इस ढंग से भक्ति सिन्हा महाराज हरि कथा पर के श्रवण पर विशेष जिसे कहते हैं जोर देते थे और बोलते थे कि हर भक्त को इसको ध्यान से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और इससे हमारे जीवन हमेशा शुभ ही शुभ होगा, हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान भगवान की कथा का श्रवण करना है। ये कन्विक्शन हम सबके अंदर होना चाहिए। हम लोग ये जो है आंदोलन है, इस आंदोलन का आधार हरि नाम है और हरि नाम की स्वरूप शक्ति है हरि कथा। ये कोई आंदोलन किसी पॉलिटिक्स पे या तिकड़मबाजी से नहीं चल रहा। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ तिकड़मबाजी करके पॉलिटिक्स करके इस आंदोलन को चला रहे हैं, ये आंदोलन चल रहा है हरि नाम की शक्ति से, हरि कथा की शक्ति से। तो इस पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। भक्ति सिन्हा महाराज एक सिंह गुरु थे, सिंह की तरह गरजते थे और कोई भी समझौता नहीं करते थे। आप सोचिए इनके शिष्यों की क्या हालत होती होगी, सिंह गुरु है ना, और खूब डांटते थे अपने शिष्यों को, प्रसिद्ध थे मठ में दो चीजें प्रसिद्ध थी, प्रभुपादेर दाल जो प्रभुपाद जी का महाप्रसाद दाल वो बड़ा प्रसिद्ध था, और प्रभुपादेर काल प्रभुपाद की डांट, जिसको भी डांट पड़ जाती वो दूसरों को बताता था आज डांट पड़ी तो प्रभुपाद जी बताते हैं गुरु हमारे गुरु इतना डांटते थे रास्कल स्टूपिड ये वो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि शिष्य लोग जान के गलती करें, खूब डांट पड़े। एक बार एक था एक शिष्य, तो रथ यात्रा थी और सारे अरेंजमेंट करने थे, सब कुछ आगे बिल्कुल सारे आगे भक्त लोग आगे ऐसे ऐसे अरेंजमेंट जो नहीं करने चाहिए जो करने चाहिए बिल्कुल नहीं किए हुए थे। तो गुरु जो थे उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने थप्पड़ मार दिया शिष्य को। शिष्य बोले कृपा मिल गई मुझे, कृपा मिल गई। और गुरु महाराज ने थप्पड़ मार दिया, मुझे छुआ। तो ऐसे करें हमको ऐसी बेवकूफी कर दे कि गुरु को गुस्सा दिलाए वो डांटे, बोले गुरु महाराज की कृपा हो गई। तो ये भी नहीं है, लेकिन गुरु हमें डांटे हैं तो हमें सह लेना चाहिए। हमें स्वर्ण से गुरु हमें अपना समझते हैं। भक्ति सिन्हा महाराज को अपने 60,000 शिष्यों के सबके नाम याद होते थे। जिन जिन से भी मिलते थे उनके नाम याद रखते थे, बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया से कहते हैं, इतना वो ध्यान रखते थे। और इसलिए वो डांट सकते थे और देखते थे कि जब उनके बड़े बड़े सन्यासी शिष्य उनकी नकल मारते थे तो किसी को अलाउ नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, वो जगन्नाथपुरी में थे और मालूम चला कि भुवनेश्वर में उनका जो मठ है वहां मंगल आरती बड़े आराम से होती है, सुबह 8 बजे 9 बजे, क्योंकि पुजारी जी आराम से उठते हैं, थोड़ा पूरा टाइम लगे तो उनको फ्रेश होने में। तो ये खबर वहां पहुंची तो उनके जो एक वरिष्ठ सीनियर सन्यासी थे उन्होंने उस पुजारी को बुलाया और उसको रियलाइज कराने के लिए उसको बाहर धूप में वेट करवाई, रियलाइज कराने के लिए कि तुम ऐसे मंगल आरती वेट करवाते हो भगवान को। तो उनको वेट कराई बाहर, धूप में खड़ा कर दिया उनको। तो जब भक्ति सिन्हा महाराज को मालूम चला, तुमने किसको डांटा? उस सन्यासी को नहीं जो ले पुजारी को नहीं डांटा, उस सन्यासी को डांटा जिन्होंने उसको बुलाया। बोले बिना मुझे पूछे ऐसा क्यों सजा दी तुमने? तो ऐसा नहीं कि हम भी बड़े उत्साहित हो जाए कि भक्ति सिन्हा महाराज खूब डांटते थे तो हम भी खूब डांटा करेंगे। वो कंपैशन से उनके करुणा वश थे, किसी को भी वो आज्ञा नहीं देते थे अपने शिष्यों को कि वो ऐसा व्यवहार करें। एक बार एक शिष्य ने बहुत बड़ी चिट्ठी लिख दी एक भक्त के पूरे दोषों का कीर्तन करते हुए, ये गंदा है, ये है, वो है, वो। तो भक्ति सिन्हा महाराज ने उनको वापस चिट्ठी लिखी कि क्यों क्रिटिसाइज करते हो, क्यों आलोचना करते हो? चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है कि जो आलोचना करते हैं वो निश्चित रूप से नर्क में जाता है। तुम्हें अगर दूसरों में दोष नजर आ रहे हैं उसका गुणगान करने से कुछ भी नहीं होगा, अपने दोषों को देखो। फिर बोध ने बोले अरे मैं तो गुरु हूं, मुझे तो दोष देखने पड़ते हैं, तुम ऐसी मुसीबत क्यों लेते हो? क्या जरूरत है, मेरा तो सेवा है ये देखना, तुम कैसा देखते हो? तो इस ढंग से किसी को ऐसा अलाउ नहीं करते थे कि कोई दोष देखे। एक बार ये ग्रस्त उनके पास आया, बोले आपका ये ब्रह्मचारी है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करता, उठता ही नहीं है, सोया रहता है, हम आते मंगल आते देखो घर से ये नहीं करता। तो क्या बोला भक्ति सिन्हा महाराज ने, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, तुम्हें आना चाहिए, वो मॉर्निंग प्रोग्राम मिस कर सकते हैं, तुम नहीं मिस कर सकते। तो उस ब्रह्मचारी ने जब ये सुना उसको इतनी शर्म आई, अगले दिन से मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक हो गया। तो ये उनका यूनिक तरीका होता था कि कैसे करेक्ट करना है। एक बार आनंद बाजार पत्रिका के जो एडिटर थे उनके पास आए, बोले आपके आश्रम में जो मठ में सारे के सारे दोगले लोग रहते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, क्यों दिखावटी जीवन जी रहे हैं? भेज दो उनको घर में वापस, विवाह करें, बच्चे पैदा करें, अच्छा असली जीवन जिए, नकली जीवन जीते हैं ये सब, क्या फायदा से जीवन का, कहते कुछ है करते कुछ है। तो क्या बोला भक्ति सिन्हा महाराज जी ने, क्या लगता है आपको? तो भक्ति सिन्हा महाराज ने बोला अगर इनको सुधरना है तो यहाँ जो जहाँ जो ये रह रहे हैं इससे कोई उत्तम स्थान नहीं है, इनको यही रहने दो, यही सुधरेंगे। और फिर एक बार फिर किसी और ने ऐसा कुछ बोला, उन्होंने बोला उनको कि देखो कि इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे उनसे बहुत प्रेम हो गया है, मैं इनको ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो ये अलग अलग तरीके थे, वो एक सिंह गुरु थे लेकिन अपने भक्तों से शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत विनम्र थे, बहुत विनम्र थे, किसी को भी अपने पांव नहीं छूने देते थे। कोई भी व्यक्ति आगे प्रणाम करता था तो भक्ति सिन्हा महाराज क्या बोलते थे, दासो अस्मि, मैं तुम्हारा दास हूं। यहां तक अपने शिष्यों को भी अपने पांव नहीं छूने देते थे, और कोई अपने पांव छूने उसको दूर से हाथ लगा के बाहर उसको रोक लेते थे। ये उनकी विनम्रता थी। देखिए इतने सर्वगुण संपन्न, इतने उनमें गुण थे और सिंह की तरह गरजते थे, सिंह गुरु कहलाते थे, लेकिन वास्तव में बहुत विनम्र, बहुत विनम्र थे। उनकी विनम्रता ही थी कि बचपन में उनसे क्या हो गई थी गलती, और आम खा लिया था, है ना, बिना भगवान को भोग लगाए आम खा लिया। तो जब उनके पिताजी ने उनको समझाया कि हर वस्तु में भगवान को भोग करके ऑफर करके खानी चाहिए, तो उन्होंने क्या प्रण ले लिया, पूरा जीवन उन्होंने आम नहीं खाया। जब भी कोई उनके पास आम लाता था तो क्या करते थे, आई एम एन ऑफेंडर, मैं एक अपराधी हूं। तो किसी के अंदर इतनी प्रगाढ़, जिसे कहते हैं पश्चाताप, ये विनम्रता का लक्षण है। जिसके अंदर विनम्रता नहीं होगी वो पहले तो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा, और थोड़ी गलती स्वीकार कर लेगा तो जल्दी भूल जाएगा। आजीवन कौन पश्चाताप करेगा? आजीवन पूरा जीवन उन्होंने एक छोटी सी गलती का पश्चाताप किया, वो भी अनजाने में, बचपने में गलती हुई। ये दिखाता है कितनी विनम्रता है। तो भक्ति सिंह महाराज के विषय में बहुत कुछ है अभी कहने को, क्या कि 5-10 मिनट हम और कह सकते हैं। तो एक बार मालूम चला उनको कि उनके कई गृहस्थ शिष्य भी थे और कई ब्रह्मचारी शिष्य भी थे, और मालूम चला कि आपस में थोड़ी सी अनबनी हो गई है, अंडरस्टैंडिंग में गलती हो गई, गलत फहमियां हो गई है। जो ब्रह्मचारी शिष्य थे वो सोचते थे कि बहुत बड़े त्यागी हैं वो सन्यासी और ब्रह्मचारी, हमसे यार कोई श्रेष्ठ नहीं है। और जो ग्रस्त शिष्य थे वो सोचते थे इनको हम इतना दान देते हैं, कुछ करते तो है नहीं, खाली बैठे रहते हैं, है ना, हम इनसे श्रेष्ठ हैं। तो दोनों में बड़ी गलत फहमियां पैदा हो गई। जैसे भक्ति सिंह महाराज के पास एक बात गई तो उन्होंने उनको दोनों एक इष्ट गोष्ठी की, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। उन्होंने ग्रस्त भक्तों को बोला कि जब तक आप भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करोगे, आप अपने परिवार वालों की सेवा करने से अनासक्त नहीं हो सकते। और बोले जब तक आप मठ में रहोगे नहीं तो आप मठ वासियों को जान कैसे सकते हो, और केवल उनसे असंतुष्ट रहकर और उनसे कुछ अपेक्षा करके, अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है और वो ब्रह्मचारी और सन्यासी से कुछ अपेक्षा करे कि हम यहां धन देते हैं, दान देते हैं, उनसे कुछ अपेक्षा करे या उनको अपने सेवक के रूप में देखे, तो उन्होंने बोला भक्ति सिंह महाराज ने, अगर आप ब्रह्मचारी और सन्यासियों को अपने सेवक के रूप में देख रहे हो और उनसे कुछ अपेक्षा करते हो, तो आप धाम में रहते हुए भी धाम की सेवा नहीं करते बल्कि धाम का भोग करते हो। और बोले जब तक आप भगवान और भगवान के भक्तों की, विशेषकर मठ में रहने वाले भक्तों की सेवा नहीं करोगे, कभी भी हरि नाम के उच्चारण में हमारी आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो इस ढंग से उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों को समझाया, और जो ब्रह्मचारी भक्त उनको ये समझाया कि जो लोग मठ में रहते हैं उनको सीख जाना चाहिए कि कैसे सहन करना है। मठ में रहने का अर्थ है कि सहन करने की प्रैक्टिस, है ना, और वो सहन करके अपने व्यवहार से आप दूसरों को शिक्षा दो। तो ये उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से फिर ब्रह्मचारियों के आगे बताया कि चैतन्य महाप्रभु के कितने अच्छे अच्छे ग्रस्त पार्षद थे, भवानंद राय, शिवानंद सह, शिवा ठाकुर। तो इस ढंग से उनके आगे उनका गुणगान करते थे और ग्रस्त आश्रमों को बताते किस ढंग से उनको सावधानी से ब्रह्मचारियों और सन्यासी के प्रति उनको व्यवहार करना चाहिए। तो इस ढंग से जब भी उनके पास कोई कंप्लेंट लेके आता था किसी और भक्त की, तो क्या करते थे, दो भक्तों में अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो इस गोष्ठी बुलाते थे और बोलते थे, एक भक्त को बोलते थे कि सबके सामने इनका गुणगान करो, दूसरे भक्त को बोलते थे सबके सामने इनका गुणगान करो, कितनी बड़ी तपस्या है, जिनके साथ हमारी अनबन चल रही है उनका गुणगान करो, सोचना पड़ता, हाँ अच्छे गुणों के बारे में सोचेंगे। और दूसरे वो बहुत ये बोलते थे कि कभी भी दूसरों का दोष मत देखो, और उन्होंने ऐसी शिक्षाएं दी कि अगर हमें दूसरों का दोष देखकर हम बहुत भ्रमित हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए, बोले सब्र रखो, आत्मावलोकन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो और अपने दोष ढूंढो। दूसरों के दोष हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए इतने हानिकारक नहीं है जितने कि हमारे दोष। और बताया कि जब तक हम सहन नहीं करेंगे और जब तक हम दूसरों की प्रशंसा नहीं करेंगे, हम हरि नाम नहीं ले सकते। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी और अपने जीवन में उन्होंने ये सब करके दिखाया। हालांकि वो सिंह गुरु थे लेकिन अदोष दर्शी थे। तो भक्ति सिंह महाराज जब उनका तिरोभाव होने लगा तो वो जगन्नाथ पुरी में आए थे लगभग अक्टूबर के महीने में, और आप सबने वहां देखा होगा चतक पर्वत, वहां पे एक मठ है गौड़िया मठ, वहां पे रहकर उन्होंने तपस्या की, कुछ दिन बिताए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर वो कलकत्ता में गए और अंत में जितने भी उनके लेक्चर्स हो रहे थे वो पहले से इंगित कर रहे थे कि मैं जाने वाला हूं। पहले से इंगित कर देते हैं। और जाने से पहले अपने हरेक प्रवचन में भक्तों को ये बता रहे थे कि कृपया करके घमंड को त्याग दें, द्वेष को त्याग दें, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके जाने के बाद आपस में बहुत लड़ाइयां होंगी। और बहुत विनम्रता दीनता प्रकट करते थे भक्तों ठाकुर का वो भजन गा के, आमार जीवन सदा पाते रत नाही का पुण्य रलेश। भक्तों ठाकुर का जो भजन है जिसमें भक्तों ठाकुर अपने अवगुणों की चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार दूसरों के सुख को देखकर वो दुखी होते हैं और दूसरों को दुख देखकर उनको बहुत सुख मिलता है, किस प्रकार वो काम वासनाओं से पीड़ित है, ये सारा का सारा भजन वो बार बार गाते थे और अपने को एक बहुत ही दरिद्र दीन और हीन दिखाते थे। और साथ साथ अपने शिष्यों को बोलते थे कि किस जंग से वो द्वेष ईर्ष्या और पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त रहे, क्योंकि मालूम था आगे जाकर इन्हीं के कारणों से मठ में बहुत लड़ाइयां होंगी। तो उनकी शिक्षाएं थी, जैसा कि आज सुबह भी मंगल आरती में रूपा लीलामृत से पढ़ा जा रहा था। बताते हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी संकट हमारे जीवन में क्यों ना आए, कितने तरह के हमें अपमान क्यों ना सहने पड़े, कितनी तरह की हमें सजाएं क्यों ना मिल जाए, कभी भी हमें भगवान की भक्ति को नहीं त्यागना चाहिए। और कभी भी हमें ये देखकर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम प्रचार कर रहे हैं उसमें कोई परिणाम नहीं मिल रहा। इस संसार में अधिकांशतः लोग भगवान के संदेश को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसलिए हर परिस्थिति में हमें भगवान का गुणगान करते रहना चाहिए। इसके लिए हमें चाहे कितना ही अपमान क्यों ना सहना पड़े, कितनी भी तकलीफें क्यों ना सहना पड़े। और इस जंग से 1937 में 1 जनवरी को सुबह के समय लगभग 5:30 बजे भक्ति स्नान महाराज जी ने अपने शरीर को त्यागा और नित्य लीला में प्रवेश हुए। तो भक्ति स्नान महाराज जी ठाकुर जी के जीवन से बहुत शिक्षाएं सीख सकते हैं कि किस प्रकार उनमें भक्ति को लेकर दृढ़ता थी, वैसा आत्मिका बुद्धि थी, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। जब उनको मालूम चला, हालांकि बचपन में उतने प्रखार पंडित थे और इतनी कम आयु में उनको ज्योतिष का ज्ञान हो गया था, जिस ढंग से चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में प्रसिद्ध थे और ईश्वरपुर से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सब कुछ अपना पंडित जीवन त्याग दिया था और उन्होंने कहा वो क्या बताया कि मैं तो एक मूर्ख हूं, उसी ढंग से भक्ति सिंह महाराज जब विमला प्रसाद तो अपने बचपन में इतने बड़े पंडित थे कि उनका भी एक डिबेट हुआ था एक व्यक्ति से, सहिताचार्य जिनका नाम था, जो कि ज्योतिष में थे, बहुत बड़े प्रखार पंडित थे। तो भक्ति सिंह महाराज उनसे बहुत उम्र में बहुत छोटे थे और उन्होंने उस पंडित को हरा दिया, वही जंग से हराया कि उस पंडित ने वही मलमूत्र त्याग दिया। तो जब सब लोगों को ये मालूम चला, कोई भी उनसे डिबेट करने को आगे नहीं आता था, इतने प्रखार पंडित। और सब कुछ इतना होते हुए भी उन्होंने जो अपने शिक्षा थी बीच में ही छोड़ दी। क्यों छोड़ दी बीच में शिक्षा? क्योंकि उनको मालूम था कि मैंने शिक्षा पूरी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो फिर परिवार से प्रेशर आएगा कि विवाह करो, और विवाह करें फिर पारिवारिक जीवन, और फिर पारिवारिक जीवन करूंगा तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने इतना सुंदर उनका देखा जाए बहुत ही दिशा से बढ़िया कैरियर चल रहा था, उसको वहीं बीच में रोक लिया और बोले नहीं, मैं चैतन्य महाप्रभु के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पित करूंगा। भक्ति सिन्हा महाराज हमें आदेश देते हैं कि ये जो शरीर है ये अपने हमें मृत शरीर है, इसका सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है कि हम संकीर्तन यज्ञ में इसको समर्पित कर दें। इस संसार का प्रत्येक वस्तु प्रत्येक धन केवल संकीर्तन यज्ञ के लिए है कि ये मान सकता है। जब एक प्रमाणिक गुरु इस संसार की प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है तो एक बहुत ही जगह भी वैकुंठ बन जाता है। तो ये कला हमने सीखनी है कि कैसे हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, और ये केवल हम प्रमाणिक गुरु के निर्देशों में ही कर सकते हैं। तो आज के दिन हम भक्ति शास्त्री महाराज के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हम हरि नाम में दृढ़ता लाएं, हरि कथा में रुचि उत्पन्न करें, भक्तों के सेवा में रुचि उत्पन्न करें। हम कहते थे भक्तों की सेवा करना, हरि नाम लेना, यही हमारा जीवन है। हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सके। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जैसे कल गुरु महाराज बता रहे थे कि हमें संकल्प लेने चाहिए। हाँ, हमारा संकल्प होना चाहिए कि 2013 में हम भक्ति में खूब प्रगति करेंगे। कौन कौन से संकल्प दिलाए थे कल? कितने भक्त थे कल रात को? कौन कौन से संकल्प दिलाए थे? हरि नाम का अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान पूर्वक जप। भक्ति सिन्हा महाराज जी ने संकल्प लिया था 1 अरब नाम लेने का, 9 साल तक प्रतिदिन उन्होंने 300,000 नाम लिए थे। और चैतन्य मठ में हम देखते हैं वहां पर उन्होंने एक घास का कुटिया बनाई थी और वहां बैठ के जब करते थे, और जब वर्षा भी होती थी उन्होंने कुटिया ठीक करने में टाइम वेस्ट नहीं किया, एक हाथ में छाता पकड़ के वो जब करते थे। 9 साल तक प्रतिदिन 300,000 नाम लिया उन्होंने, और इस तरह से 1 अरब का उन्होंने जो संकल्प लिया था वो पूरा किया। और पहला संकल्प, दूसरा गीता भागवतम के प्रतिदिन अध्ययन करना, और एक श्लोक कम से कम यानी एक ही श्लोक फटफट के साथ, और केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार करें, केवल कृष्ण प्रसाद। और चौथा साधु संघ, हमेशा साधु संघ में रहे। तो वही शिक्षाएं हैं, ये छोटे छोटे समय लगते हैं, संकल्प हैं, इन्हीं को हम सही ढंग से करें तो हमारा जीवन सिद्ध हो सकता है। हमें और कोई संघर्ष नहीं करना, कुछ भी संघर्ष नहीं करना, केवल जो शिक्षाएं मिली हैं उसका केवल पालन करना है। तो श्री भक्ति सिंह महाराज के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी त्रिभावती महा महोत्सव के गाय गौर प्रेमानंद।